रात्रि क्लास चल रहा था 14/1/1967। दूसरे पेज के अध्याय में बात चल रही थी, अभी सन्यासी मंत्र देकर कुछ कहते हैं न समझते हैं और न कुछ समझाते हैं कि तुमको ये मिलेगा वो क्या मिलेगा। कहते हैं हम भारत का प्राचीन राजयोग सिखाते हैं, परंतु वास्तव में तो राजयोग की बात तुम समझाएंगे ना, कहेंगे कि शिव बाबा की बात है, शिव बाबा की सिवाय दुनिया में कोई राजयोग नहीं सिखा सकता। राजयोग सिखा करके राजा बना ही नहीं सकता। दुनिया में सब मनुष्य मात्र अधीन बनावेंगे, स्वाधीन कोई नहीं बना सकता। स्वाधीन राजा होता है, राजा किसी के अधीन नहीं होता। तो शिव बाबा को ही कहेंगे कि वो सदैव स्वमाने आत्मा, आत्मिक स्थिति में रहने वाला है। दुनिया में ऐसी कोई आत्मा नहीं है जो सदात्मिक स्थिति में रहने वाली हो। सदा स्वयं स्थिति में रहने वाली आत्मा ही स्वर्ग स्थापन कर सकती है। स्वर्ग कोई कहेंगे जीवन मुक्ति, जहाँ देवताएं जीवन में भी रहते हैं और दुख दर्दों से सदा मुक्ति भी होती है। तो वो बाबा, वो हमारा बाबा है। बाबा ग्रैंडफादर को कहा जाता है। हम सब आत्माएं भाई भाई हैं, सब मनुष्य आत्माएं भाई भाई हैं। कहते भी है हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई सब आपस में भाई भाई, तो कभी भाई भाई होकर रहे होंगे ना। वास्तव में जब भगवान इस सृष्टि पर आते हैं तो हमको ये ज्ञान देते हैं कि तुम देह नहीं हो, तुम आत्मा हो। ये देह के धर्म छोड़ो, हम हिंदू हैं, मुसलमान हैं, सिख हैं, ईसाई हैं, हमारा धर्म पिता मोहम्मद है, क्राइस्ट है, बुद्ध है, गुरु नानक है, ये सब देहधारी धर्म पिताए हैं। इन सब को देह का भान रहता है। इन सब ग्रेट फादर्स कहे जाने वाले धर्म पिताओं का भी बाप, जो सब धर्मों में मान्यता प्राप्त है, वो है आदम, सारी मनुष्य सृष्टि का बाप। अंग्रेजों में उसे कहते हैं एडम, हिंदुओं में कहते हैं आदिदेव, जैनियों में कहते हैं आदिनाथ, तो वो है सारी मनुष्य सृष्टि का पिता, और उस पिता का भी कोई पिता है जिसे बाबा कहा जाता है, ग्रैंडफादर। कोई भी आत्मा को, मनुष्य आत्मा को बाप का वर्षा मिले या न मिले, लेकिन ग्रैंडफादर का वर्षा हर मनुष्य आत्मा को मिलता है। वो वर्षा है दुखों से मुक्ति और जीवन मुक्ति। कम से कम एक जन्म के लिए जीवन मुक्ति सबको मिलती है, तो वो हमारा बाबा अर्थात ग्रैंडफादर है ना। ग्रैंडफादर का वर्षा जरूर मिलता है, बस बाबा माने वर्षा। तुम कोई सन्यासी को, गुरु को बाबा नहीं कहेंगे, ग्रैंडफादर कहेंगे नहीं। और दूसरे कोई को भी तुम बाबा, ये बाबा अक्षर कहेंगे तो वो आर्टिफिशियल हो जाता है। चाहे क्राइस्ट हो, बुद्ध हो, गुरु नानक हो, जैसे बापू गांधी को बापू कह देते हैं, ये शब्द भी आर्टिफिशियल है। सचमुच कोई बापू है थोड़े ही, वो दुनिया वाले तो मेयर को भी बापू कह देते, उसको भी फादर कह देते। नहीं, उन सभी को बापू कहना ये रंग है, और ये बापू तो राइट है जो सारी मनुष्य सृष्टि का बाप है। और उसका भी एवरलास्टिंग बाप शिव बाप है, जिसका कोई बाप नहीं। बराबर आत्मा का बाप है। और दूसरा जिस्मानी लौकिक बाप होता है, वो सबका अलग अलग होता है। वो जिस्मानी लौकिक बाप जो सबका अलग अलग होता है, वो है हद का बाप। और सारी मनुष्य सृष्टि का बापू सारी मनुष्य मात्र जो प्रजा है, 500-700 करोड़ की प्रजा, सब धर्मों से जो मनुष्य सृष्टि की प्रजा बनती है, उसमें इस लोक का बापू है प्रजापिता। जिसे आदम और एडम कहा जाता है। तो अभी जिस्मानी बाप कहते हैं, जिस जिस्मानी बाप के ये 500-700 करोड़ सभी बच्चे हैं, और उसके मुकाबले एक है और बेहद का बाप, वो है आत्माओं का बाप, शिव बाप, जो कभी आत्मिक स्थिति को छोड़ता ही नहीं, इसलिए उसको सदा शिव कहा जाता है। तो ये जो बेहद का जिस्मानी बाप है, उनके तो सभी बच्चे ठहरे, सारे ही मनुष्य मात्र उनके बच्चे हैं। वो उनको कहते हैं, सब बच्चों को कहते हैं, कौन कहते हैं है? वो बेहद का जिस्मानी बाप सभी बच्चों को कहते हैं कि तुम मुझे याद करो। कौन कहते हैं है? कौन कहने वाला? अरे दो बेहद के बाप बताए, एक आत्माओं का बाप और दूसरा मनुष्यों का बाप। तो दोनों बेहद के बाप में से कौन कहते हैं कि मुझे याद करो है? कौन? साकार मनुष्य सृष्टि का बाप कहते हैं कि मुझे याद करो। अच्छा, आत्माओं का बाप नहीं कहते हैं कि मुझे याद करो है? वो नहीं कहते हैं मनमना बब मुझे याद करो? अगर नहीं कहते हैं तो क्यों नहीं कहते हैं? जिस्मानी बाप जो बेहद का बाप मनुष्य सृष्टि का है, वो क्यों कहते हैं कि मुझे याद करो? इसलिए कहते हैं कि जिस्मानी बाप को मन है और रूहानी बाप को मन नहीं है, तो कौन कहेगा मन मना भव मेरे मन में समा जा है? जिस्मानी बाप कहेगा या रूहानी बाप कहेगा? रूहानी बाप क्यों नहीं कहेगा? क्योंकि उनको मन है ही नहीं, उनको मन चलाने की दरकार ही नहीं। वो तो सदा अमन है, सदा अमन चैन में रहने वाला है, कभी बेचैन होता ही नहीं है। तो बताया कि जो बेहद का जिस्मानी बाप है, उनके सभी बच्चे ठहरे, हिंदू हो, मुसलमान हो, सिख हो, ईसाई हो, सब उसके बच्चे। वो बेहद का जिस्मानी बाप कहते हैं उन बच्चों को, और सब बच्चों को कहते हैं कि तुम मुझे याद करो। क्यों कहते हैं? इसलिए कहते हैं कि मुझे याद करेंगे तो तुम्हारी प्रवृत्ति मार्ग की याद होगी। क्या? आत्मा और शरीर की प्रवृत्ति है, साकार में निराकार को याद करेंगे तो प्रवृत्ति की याद है, और सिर्फ निराकार आत्मा को याद करेंगे, ज्योतिबिंदु आत्मा को याद करेंगे तो प्रवृत्ति की याद है या निवृत्ति की याद है? निवृत्ति की याद हो जाती है। निवृत्ति की याद करेंगे तो जैसे शिव बाप 5000 साल के लिए निवृत्त होकर बैठ जाता है वानप्रस्थी होकर, तो क्या तुमको 5000 साल निवृत्त होकर के बैठना है? है? इस साकार सृष्टि में तुम आत्मा रूपी बच्चे सुख भोगना चाहते हो, दुख नहीं भोगना चाहते। सुख भोगना चाहते हो, शरीर में रहते सुख भोगना चाहते। ऐसे कोई नहीं कहेगा कि हमें सुख नहीं चाहिए। सन्यासी कहते हैं हमें शांति चाहिए, हमें ये दुख की दुनिया नहीं चाहिए, हम सदा काल के लिए इस सृष्टि से मोक्ष को पालें। परंतु देखो ये कैसी हंसी की बात हो जाती है कि भगवान को तो कहते हैं तुम इस सृष्टि पर हर युग में आते हो, संभवामि योगी युगे, और अपन को कहते हैं हम इस सृष्टि पर आना ही नहीं चाहते। तो भगवान जैसी आत्मा, ऊंचते ऊंच आत्मा, उसको भी इस सृष्टि पर एक बार आना ही पड़ता है, तो मनुष्य आत्माएं सदा काल के लिए मुक्त कैसे हो सकती हैं? हो सकती हैं? नहीं हो सकती हैं। और आत्मा अगर इस सृष्टि रूपी मंच पर पार्टी न बजावे तो फिर आत्मा विनाशी हो गई या अविनाशी हो गई? आत्मा का जैसे विनाश हो गया तो आत्मा तो अविनाशी है और उसका पार्ट भी अविनाशी है। तो बताया कि तुम बच्चे भक्ति मार्ग में मुझे याद तो करते हो और अभी मैं स्वयं कहता हूं संगम युग में कि मुझे याद करो। संगम युग में ही क्यों कहता हूं अभी? हैं? भक्ति मार्ग में प्रत्यक्ष होकर के क्यों नहीं कहता कि मुझे याद करो? संगम युग में ही मुझे कहना होता है कि मुझे याद करो, क्योंकि संगम में आत्माओं के बाप और मनुष्यों के बाप माने देहधारियों के बाप का मेल होता है, संगम होता है, और किसी युग में संगम नहीं होता है। देहधारियों के बाप का भी संगम नहीं होता और आत्माओं के बाप का भी संगम नहीं होता, इसलिए अभी मैं स्वयं कहता हूं कि मुझे याद करो तो तुम्हारा विकर्म विनाश हो जाएगा। तुम्हारे देह के द्वारा किए हुए जो भी विपरीत कर्म है, भी माने विपरीत कर्म, विकर्म अर्थात पाप कर्म जो हैं, वो भस्म हो जाएंगे, क्योंकि इस बात की गहराई को कोई नहीं जानता है कि मुझे याद करने से खास संगम युग में याद करने वालों के पाप कर्म कैसे भस्म हो जाएंगे। ये संगम युग ही है जिस युग में आत्माओं के बाप जो जन्म मरण के चक्र से न्यारा है, इसलिए त्रिकालदर्शी है, जो आत्माएं जन्म मरण के चक्र में आने वाली हैं, वो पूर्व जन्मों की बातों को भूल जाती हैं और जो जन्म मरण के चक्र में ही नहीं आता वो भूलता ही नहीं है, त्रिकालदर्शी है। वो त्रिकालदर्शी बाप हम देहधारी आत्माओं को आकर के ये ज्ञान देते हैं कि तुम विनाशी देह नहीं हो, तुम तो अविनाशी आत्मा हो और अविनाशी आत्मा देह को धारण करके अविनाशी बन सकती है या नहीं बन सकती है? अविनाशी आत्मा, क्योंकि आत्मा है तो सब अविनाशी है, उनका विनाश तो होता ही नहीं, लेकिन इस सृष्टि रूपी रंगमंच पर ऐसी स्टेज धारण कर सकती है या नहीं धारण कर सकती है कि रंगमंच पर उनके पार्ट का कभी भी विनाश न हो है? पार्ट का भी विनाश न हो, ऐसी स्टेज धारण कर सकती है या नहीं कर सकती है? कैसे? अगर निराकार आत्माएं सिर्फ निराकार बाप को याद करेंगी तो निराकारी धाम में उन्हें रहना पड़े, जैसे आत्माओं का निराकार बाप 5000 साल के लिए निराकारी धाम में रहता है, जिसको याद करेंगे वैसे ही बनेंगे ना है? चोरों को याद करेंगे तो चोरी के गुण आ जाएंगे, संस्कार आ जाएंगे, स्वभाव संस्कार वैसे ही हो जाएंगे। निराकार को याद करेंगे तो निराकार जैसे है वैसे ही बन जाएंगे। मिसाल के तौर पर जितने भी धर्म पिताएं हैं दूसरे दूसरे धर्मों के, वो सब धर्म पिताएं निराकार को याद करते हैं या साकार को मानते हैं? तो वो लंबे समय तक परम धाम में पड़े रहते हैं या नहीं पड़े रहते हैं? हैं? पड़े रहते हैं। लेकिन ऐसी भी कोई आत्मा हो सकती है या ऐसी भी कोई ढेर की ढेर और भी आत्माएं हो सकती हैं जो 84 जन्मों तक इसी सृष्टि रूपी रंगमंच पर रह करके पार्ट बने? हो सकती है या नहीं? नहीं हो सकती। हो सकती है। अब सवाल है कैसे हो सकती है? ऐसे हो सकती है कि जो भी आत्माएं हैं वो निराकार के साथ साथ ऐसे बेहद के बाप को भी पहचाने जो मनुष्य सृष्टि का बाप इस सृष्टि रूपी रंगमंच पर ऑलराउंड पार्ट बजाने वाला है। जो हीरो पार्टधारी होता है वो ऑलराउंड पार्ट बजाता है या किसी सीन में पार्ट बजाता है कोई में नहीं बजाता है? ऑलराउंड पार्ट बजाता है। तो इस मनुष्य सृष्टि का जो बाप है, जो मनुष्य सृष्टि का बीज है, बीज का कभी विनाश होता है? है? बीज का विनाश नहीं होता। मान लो सर्दियों में फल लेने वाला कोई बीज है, जैसे गेहूं, बरसात में डाल दिया धरणी में, तो बरसात के मौसम में या तो उगेगा नहीं, उगेगा तो फल नहीं देगा, कहां फल देगा? जब सर्दी का मौसम आएगा तब ही फल देगा। या बीज पथरीली जमीन पर डाल दिया जाए तो भी फल नहीं देगा। माना कि बीज का विनाश नहीं होता है, तो इस सब मनुष्य सृष्टि का भी एक बीज है जो अविनाशी है। इस सृष्टि रूपी रंगमंच पर अविनाशी है, ऐसा उसका पार्ट है जो कभी सृष्टि रूपी रंगमंच पर पार्ट खत्म ही नहीं होता। दुनिया खत्म हो जाती है, जड़ जंगम सारे पदार्थ विनाश को पाते हैं, लेकिन उन जड़ जंगम पदार्थों का एक बीज है जिसका विनाश कभी होता ही नहीं। जिसको गीता में कहा है परमात्मा इति उदाहरत, दो तरह की आत्माएं बताई, एक क्षर और दूसरी अक्षर। क्षर माना क्षरित होने वाली, पतित होने वाली शक्ति जिनकी छीण होती है, ऐसी क्षरित होने वाली आत्मा, और एक और आत्मा है जो क्षरित होने वाली आत्माओं के बीच तुरिया है, वो कभी क्षरित ही नहीं होती। इस सृष्टि रूपी रंगमंच पर पार्ट बजाती है तो भी अक्षर रहती है, कोई के संग के रंग में नहीं आती, अटैचमेंट में नहीं आती। इब्राहिम, बुद्ध, क्राइस्ट, सभी धर्म पिताएं जो ग्रेट फादर्स कहे जाते हैं, वो सब संग के रंग में आकर के उनकी आत्माएं छरित होती हैं, छीण हो जाती हैं। लेकिन जो उन बापों का भी बाप वो भी छरित नहीं होता, और उसका भी बाप शिव बाप जिसे कहा जाता है, जिसकी मूर्तियां सारी दुनिया की खुदाइयों में मिलती हैं, सबसे जास्ती तादाद में मिलती हैं, और सारी दुनिया में उसके मंदिर भी अभी बनाए जा रहे हैं। किसके है? शिवलिंग के। जो शिवलिंग शिवलिंग कहा जाता है, क्या क्या कहा जाता है? शिवलिंग कहा जाता, शंकरलिंग नहीं कहा जाता। वो शिवलिंग की यादगार भारतवर्ष में तो गांव गांव, शहर शहर में है ही, विदेशों में भी है, जिस शिवलिंग के आगे भक्त लोग जाकर के 2500 वर्ष ये प्रार्थना करते रहे, त्वमेव माता च पिता त्वमेव, त्वम माने तू ही एक मेरी माता है, त्वम माने तू ही एक मेरी मेरा पिता है। अब बताओ माता और पिता एक कैसे हो सकता है? माता स्त्री जाति में और पिता पुरुष जाति में, और शिवलिंग के सामने जाकर कहेंगे तुमेव माता च पिता त्वमेव, मेरी माता भी हो पिता भी हो, एक तुम ही हो। तो एक ही कैसे हो जाएंगे? द्वैतवादी द्वापर युग से जब से ये धर्म पिताएं आए तब से ही ये भक्ति मार्ग चला आया, पूजा चली आई शिवलिंग की। पुराने तो पुराना शिवलिंग सोमनाथ मंदिर में बनाया गया था, जिस सोमनाथ मंदिर में गोलाकार के लिंग के बीच में हीरा जड़ा हुआ था, ये यादगार बताती है कि वो लिंग है साकार शरीर की यादगार, बड़े रूप की यादगार, और उसमें जो हीरा है वो है आत्मा की यादगार। आत्मा और शरीर दोनों का मेल दिखाया गया है, और जिसे शिवलिंग कहा गया उसमें प्रश्न ये पैदा होता है कि शिव जिसका नाम है वो आत्मा का नाम है या शरीर का नाम है? आत्मा का नाम है शिव, और जो भी आत्माएं होती हैं उनके शरीर के नाम होते हैं। एक ही आत्मा है जो जन्म मरण के चक्र में नहीं आती, जिसका अपना शरीर होता ही नहीं, कभी गर्भ से जन्म लेती ही नहीं, उस आत्मा को अपना शरीर होता ही नहीं। जब शरीर नहीं होता तो उसमें लिंग इंद्रिय कहां से आएगी? हो सकती है? है? नहीं हो सकती। हाथ पांव नाक आंख कान लिंग में दिखाए जाते हैं क्या? है? नहीं दिखाए जाते। और सुप्रीम सोल शिव जो हेवनली गॉड फादर कहते हैं क्रिश्चियन लोग, वो निराकार शिव जिसको इंद्रियां होती ही नहीं, शरीर होता ही नहीं, उसके लिए कैसे कहेंगे शिवलिंग? मेरे लिंग की पूजा होती है, वो कह सकता है? है? मेरे कान की पूजा होती है, मेरी आंख की पूजा होती है, मेरे हाथ की पूजा होती है, ऐसे वो निराकार सदाशिव कह सकता है? कह सकता है? कह ही नहीं सकता। तो वो निराकार शिव जब इस सृष्टि पर आता है तो कोई मुकर्रर रथ में प्रवेश करता है। किस मुकर्रर रथ में? जो इस षष्ठी रूपी रंगमंच पर वो शरीर रूपी रथ सदा मुकर्रर है, कभी लोप होता ही नहीं, ऐसे मुकर्रर रथ में आता हूं। इसलिए गीता में बोला है अर्जुन के रथ के लिए, अर्जुन का जो शरीर रूपी रथ है उसके लिए बोला, इदम शरीरम कौन्तेय क्षेत्रम इत्यभिधीयते। हे अर्जुन, तुम्हारा यह जो शरीर है ये युद्ध क्षेत्र है, धर्म क्षेत्र है। दुनिया में जितने भी धर्म फैले हुए हैं उन सब धर्मों का धर्म क्षेत्र ये तुम्हारा शरीर है। उन धर्मों के आधार पर जितने कर्म कांड फैलाए गए हैं, मुसलमान क्रिश्चियंस जमीन में दफनाते हैं, मिट्टी में मिलाते हैं मुर्दे को, और भारतवासी जलाते हैं। तो ये कर्म हुआ ना, जलाने का या दफनाने का जमीन में। ये जो अलग अलग प्रकार के अनेक प्रकार के धर्मों के आधार पर कर्म कांड बने हुए हैं, और उन कर्म कांडों को लेकर के, धर्मों को लेकर के सब आपस में झगड़ रहे हैं। तो ये झगड़े का मूल कारण कहाँ है? है? इस झगड़े का स्रोत कहाँ है? है? ये तेरा शरीर, ये तेरा शरीर रूपी जो यज्ञ कुंड है, इस यज्ञ कुंड में ये सारे धर्म और दुनिया के धर्मों में फैले हुए ये सारे कर्म कांड सब खलास हो जाएंगे। लेकिन तेरा ये शरीर खलास होने वाला नहीं है, ये अविनाशी यज्ञ कुंड है, इसका नाम अविनाशी रुद्र ज्ञान यज्ञ कुंड है। क्या नाम है? अविनाशी शिव यज्ञ कुंड नहीं, ब्रह्मा यज्ञ कुंड नहीं, विष्णु यज्ञ कुंड नहीं। क्या नाम दिया? अविनाशी रुद्र ज्ञान यज्ञ कुंड। मेरा तो नाम बिंदी के ऊपर, आत्मा के ऊपर है। वो कहता है आत्माओं का बाप निराकार, कि मेरी आत्मा का ही नाम शिव है, मेरा शरीर होता ही नहीं। तो तेरा ये जो शरीर है ये शरीर के आधार पर नाम पड़ा है, रौद्र रूप धारण करने वाला है। रौद्र माने भयंकर, ऐसा भयंकर रूप धारण करने वाला है जिसको कहते हैं कालों का काल महाकाल, जिसको कोई काल खा नहीं सकता, वो सारी दुनिया को खा जाएगा लेकिन उसको कोई खा नहीं सकता। ऐसा ये तेरा शरीर रूपी यज्ञ कुंड है, इसमें सारी दुनिया को स्वाहा होना है। कैसे? मनमना भव। किसने कहा? किसने कहा? कौन सी आत्मा ने कहा? है? मेरे मन में समा जा। मत माने मेरे, मन माने मन, मना माने मन, मन में भव माने समा जा। किसने कहा? अरे कौन सी आत्मा ने कहा मेरे मन में समा जा? मनुष्य शक्ति के बाप ने कहा कि मेरे अंदर इस मनुष्य शक्ति का जो भी जड़ जंगम पदार्थ है, चेतन और अचेतन पदार्थ, उन सब का बीज है। सारी शक्ति का बीज मेरे अंदर समाया हुआ है। तो जैसे परिवार है, कोई भी बाप का परिवार कहां से निकलता है? है? बाप से ही निकलता है। तो ये सारी मनुष्य शक्ति रूपी जो परिवार है, जो कभी वसुधैव कुटुंबकम था, वो सारा जड़ जंगम परिवार, सारी मानवीय शक्ति का परिवार मेरे अंदर समा जाता है। कैसे? मैं कहता हूं मनमना भव, मेरे मन में समा जा। अरे तेरे मन में क्या है, है? तेरे मन में समा जा तो तेरे मन में क्या है? अरे एक शिव बाबा, दूसरा ना कोई। उसके मन में स्मृति किसकी है? एक निराकार शिव की स्मृति है। और शिव ही सृष्टि पर आकर कहता है ब्रह्मा मुख द्वारा, मैं तुम बच्चों को आप समान नंबर वार बनाकर जाऊंगा। कैसा बनाकर जाऊंगा? आप समान, जैसे मैं निराकार ज्योति बिंदु, निराकारी निर्विकारी निरहंकारी बनाकर जाऊंगा, लेकिन नंबर वार। तो जो अव्वल नंबर में निराकारी निर्विकारी निरहंकारी बनता है, जो मनुष्य आत्मा, उसके उस स्वरूप को जिसके आधार पर वो बोलता है, मन मना भव, मेरे मन में समा जा, तो उसके मन में क्या समाया हुआ है? ज्योतिबिंदु। क्या समाया हुआ है? ज्योतिबिंदु समाया हुआ है। सिवाय ज्योतिबिंदु के और दूसरा कोई भी संकल्प नहीं है। किसी मनुष्य मात्र की याद नहीं है, किसी पदार्थ की याद नहीं है, इस दुनिया के किसी प्राणी की याद नहीं है, सिर्फ एक है, उस आत्मा की यादगार है, याद है, जो सदा कायम है, और इस सृष्टि पर भी आकर के सदा कायम है अपने स्वरूप में, किसी के संग के रंग में नहीं आता। तो उसकी याद से उस समान बन जाता है, साकार शरीर रहते रहते बन जाता है या शरीर छोड़कर बन जाता है, हैं? शरीर रहते रहते अव्वल नंबर में वो बनता है, और जो अव्वल नंबर में बनता है उसी के लिए मुसलमान कहते हैं अल्लाह अव्वल दीन। अल्लाह ने आकर के अव्वल नंबर दीन अर्थात धर्म की स्थापना की, जिसे भारत में कहते हैं सत्य सनातन धर्म। सनातन माने पुराने थे, पुराना, जिससे पुराना दुनिया में कोई धर्म था ही नहीं। तो उस सत्य सनातन धर्म का स्थापक इस षष्ठ रूपी रंगमंच पर सदा सत्य है, कभी असत्य अर्थात उसका लोप होता ही नहीं, और उसको जो याद करते हैं मन बुद्धि वाली आत्माएं अर्थात मनुष्य, तो वो भी उसकी याद में समा जाते हैं, उसकी याद में लीन हो जाते हैं। जैसे सन्यासियों ने मिसाल दिया कि सब आत्माएं सागर के बुलबुले हैं, स्पाइसेस हैं, छोटे बड़े बुलबुले हैं, सागर से ही निकलते हैं और सागर में ही समा जाते हैं। तो वास्तव में जो भी प्राणी मात्र की आत्माएं हैं, चाहे मनुष्य हो, पशु हो, पक्षी हो, कीड़े मकोड़े हो, पेड़ पौधे हो, सबकी आत्मा इस सच्ची रूपी रंगमंच पर सदाकाल पार्ट बजाने वाली नहीं है, ऑलराउंड पार्ट बजाने वाली नहीं है, परंतु उन सब प्राणियों का जो बीज है मनुष्य सृष्टि में भी जो बीज है, जिसे कहा जाता है आदम, एडम, वो इस सृष्टि रूपी रंगमंच पर सदा काबिज है। और जब वो योग बल के आधार पर संपन्न स्टेज पकड़ता है तो वो ही शिवलिंग का रूप है, क्योंकि शिव बाप कहते हैं मैं न पूज्य बनता हूं और न पुजारी बनता हूं, वो निराकार आत्माओं का बाप न पूज्य है और ना पुजारी है, फिर कौन है? है? फिर कौन है? जो भी देवात्माएं हैं वो सब पूज्य बनती है और पुजारी भी बनती है। उन देवात्माओं का जो बाप है महादेव, जिसे कहा जाता है देवदेव महादेव आदि देव, वो ऐसी आत्मा है जो सबका बीज रूप बाप है, जो इस सच्ची रूपी रंगमंच पर सदा कायम है। और जब अपने योग बल की संपन्न स्टेज को पकड़ता है तो उस समय इस मनुष्य सच्ची की सभी आत्माएं, मनुष्य आत्माएं भी और प्राणी मात्र भी उसी ज्योति बिंदु की याद में समा जाते हैं। जैसे सागर में बुदबुदे समा जाते हैं, झाड़ के चित्र में शिव बाबा ने साक्षात्कार के आधार पर झाड़ के ऊपर बैठा हुआ वो नग्न रूप निराकार की यादगार दिखाया है मनुष्य रूप में। याद आया यहां दिखाया है कि सभी आत्माएं अपना शरीर छोड़ छोड़ करके उसमें समाती जा रही हैं। किसमें? जो कहता है मन मना भव, मेरे मन में समा जा, माने तेरे मन में ज्योति बिंदु, उस ज्योति बिंदु स्वरूप में इस सृष्टि की सभी आत्माएं समा जाती हैं। महामृत्यु के समय, महाविनाश के समय, और उसी में से सारी आत्माएं अपने नंबर पर नंबर वार निकलती हैं। जैसे कोई बाप होता है दुनिया में, वो बाप अपना परिवार बनाता है तो नंबर वार बच्चे पैदा होते हैं, वे एक साथ पैदा हो पड़ते। ऐसे ही इस मनुष्य सृष्टि का बाप है, जहां से सभी जड़ जंगम की पैदाइश होती है। अब सवाल है, सभी जड़ जंगम जो उसमें समा जाते हैं स्मृति के आधार पर, समाने से पहले उन सभी आत्माओं की एक ही स्टेज होती है, क्या? ज्योति बिंदु, नो संकल्प। ज्योति बिंदु माने संकल्प या नो संकल्प है? स्टॉप। अरे संकल्प चलाने में स्टॉप लग गया या संकल्पों की सरणी चलती रहती है? स्टॉप, फुल स्टॉप, ज्योति बिंदु। अभी क्या है? हर मनुष्य आत्मा रूपी ज्योति बिंदु के अंदर अलग अलग संकल्प चलते हैं। जो इनके अंदर सो इनके अंदर नहीं, जो इनके अंदर संकल्प वो इनके अंदर नहीं, सबके संकल्प अलग अलग, तुंडे तुंडे मतर भिन्ना। फिर क्या होता है? सबके संकल्प उसे एक ज्योति बिंदु में समा जाते। इसीलिए गीता में लिखा है अव्यक्त मूर्ति ना, अव्यक्त मूर्ति से सारी सृष्टि का जन्म होता है और उसी अव्यक्त मूर्ति में सारी सृष्टि के जड़ जंगम पदार्थ समा जाते। अब सवाल है, पहले उस बीज रूप सार में से जो मनुष्य सृष्टि का बाप है उसमें से जड़ पहले आएगा या चैतन्य पहले आएगा? क्या पहले आएगा इस सच्चे रूपी रंगमंच पर? है जड़ पहले आएगा? दुनिया में भी देखें कि माता में पहले आत्मा आती है, कि आत्मा जिस शरीर का आधार लेगी वो जड़ शरीर तैयार होता है। क्या तैयार होता है? जड़ शरीर तैयार होता है। उस जड़ शरीर का पहले पहले रूप छोटा होता है, भ्रूण, और वो भ्रूण भी बनता है कहां से आता है? बाप से आता है। तो ऐसे ही है, जो बताया हम मनुष्य आत्माओं को कि 100 साल का पुरुषोत्तम संगम युग है, सभी प्राणी मात्र का शरीर का विनाश इन 100 वर्षों के अंदर है। चैतन्य आत्माएं तो अपने जड़ शरीर को छोड़कर बाप के चैतन्य स्वरूप में समा जाएंगी। आत्मा परमात्मा में लीन हो जाएगी। जो मनुष्य गुरुओं ने कह दिया आत्मा सो परमात्मा, लेकिन ये गलती कर दी उन्होंने, समझा हर आत्मा सो परमात्मा, लेकिन हर आत्मा परमात्मा नहीं है। एक ही मनुष्य सृष्टि का बीज है जो परमात्मा इति उदाहरत गीता में कहा गया। चरित होने वाली आत्माओं में, पतित होने वाली आत्माओं में एक ही आत्मा है जो पतित से पावन बनती है योग बल के आधार पर, और उस योग बल का तरीका देने वाला कौन, योग बल सिखाने वाला कौन, वो योग बल देता है या योग बल को ग्रहण करने के लिए ज्ञान देता है? है वो योग बल नहीं देता, वो योग बल इकट्ठा करने के लिए तरीका देता है, ज्ञान देता है, क्योंकि वो निराकार आत्माओं का बाप है। बाप माने वर्षा, वो बाप ही क्या जिससे वर्षा मिले ही नहीं, तो वो निराकार आत्माओं का बाप क्या देता है? है निराकार वर्षा देगा या साकार वर्षा देगा? निराकार वर्षा देता है। क्या निराकार वर्षा? ज्ञान का वर्षा देता है। वो निराकार ज्ञान का वर्षा जो मनुष्य आत्मा उस वर्षे की कदर करती है, और जितनी जास्ती कदर करती है उस ज्ञान के वर्षे की, जीवन में तन की शक्ति लगाकर, धन की शक्ति लगाकर, मन की शक्ति लगाकर, संबंधियों की शक्ति लगाकर, और समय की शक्ति लगाकर जीवन में जितनी ही उस ज्ञान की कदर करती है उतनी ही वो आत्मा योगी बनती है। संपूर्ण ज्ञानी है तो संपूर्ण योगी बनती है, अधूरा ज्ञानी है तो अधूरा योगी बनेगी। बाकी बाप किसी को योग बल देता नहीं है, आत्माओं का बाप वो तो सिर्फ रास्ता बताता है, जो करेगा सो पाएगा। तो मनुष्य आत्माओं के बीच में एक ही आत्मा है जो आत्माओं के बाप का बड़ा बच्चा है। कैसा बच्चा? बड़ा बच्चा। बड़ा और छोटा वेद में ज्ञान के आधार पर कहा जाता है या दुनियावी आधार पर कहा जाता है? ज्ञान के आधार पर बड़ा और छोटा कहा जाता है। जैसे शास्त्रों में आया है कि ब्रह्मा के पहले पहले चार मानसी पुत्र हुए, नंबरवार पैदा हुए, उनमें छोटे थे सनत कुमार, पैदाइश के आधार पर, परंतु वो ज्ञान और योग के आधार पर सबसे पीछे चले गए तो उनको बड़ा माना गया, योग ईश्वर का टाइटल मिला, ज्ञानेश्वर का टाइटल मिला, और वो ज्ञानियों का ईश्वर है, योगियों का ईश्वर है। इस सृष्टि रूपी रंगमंच पर अबलंबर का धर्म पिता माना गया, जिस धर्म पिता के नाम पर धर्म का नाम पड़ता है। बुद्ध के नाम पर बौद्ध धर्म, मोहम्मद के नाम पर मुस्लिम धर्म, क्राइस्ट के आधार पर क्रिश्चियन धर्म, ऐसे ही सनत कुमार के नाम पर सनातन धर्म नाम पड़ा। और वो इस मनुष्य सृष्टि में ज्ञान और योग की शक्ति के आधार पर सत्य कहा गया। क्या सत्य? उसे कहा जाता है जिसका कभी विनाश नहीं होता। जैसे गीता में कहा है, ना सते विद्यते भावो ना भावो विद्यते सतः। सत्य का कभी इस दुनिया में अभाव होता ही नहीं। सत्य का अभाव नहीं होता तो सत्य संग का अभाव होगा है? नहीं हो सकता। इस दुनिया में सत्य सदैव रहता है, और सत्य रहता है तो सत्य को फॉलो करने वाले सत्संगी भी रहते हैं, जिन्हें सत्य सनातन धर्म वाला कहा जाता है, जो धर्म और धर्म खंड इस दुनिया में अविनाशी है, और धर्म विनाशी है, और उनके धर्मखंड भी विनाशी है। एक भारत खंड ही है जो अविनाशी धर्मखंड है, उसका नाम ही है भारत। रत माने लगा हुआ, भा माने ज्ञान की रोशनी, काहे में लगा हुआ, सदैव ज्ञान की रोशनी में लगा हुआ। जब आत्माओं का बाप इस सृष्टि पर आते हैं और उसकी जब से पहचान होती है तब से लेकर मन आदि से लेकर के अंत तक वो भारत नामधारी आत्मा भा माने ज्ञान की रोशनी में ही रत रहती है। क्या दुनियावी भौतिक ज्ञान में रस नहीं लेती। दो प्रकार का ज्ञान है, एक है पंचभूतों का ज्ञान, पृथ्वी जल वायु अग्नि आकाश का ज्ञान, जिससे ये शरीर बनता है, देह बनती है, माना दैहिक ज्ञान, जिसे भौतिकवादी ज्ञान में आज सारी दुनिया डूबी पड़ी है। और एक होता है आध्यात्म ज्ञान, अधि माने अंदर, आप माने आत्मा के अंदर, माने आत्मा के अंदर 84 जन्मों का क्या ज्ञान भरा पड़ा है, उस ज्ञान को मनन चिंतन मंथन करना ये भौतिक ज्ञान से विपरीत है। इस दुनिया में और सभी धर्म भौतिकवादी है, सिर्फ एक आत्माओं का बाप आकर जो धर्म स्थापन करते हैं वो है अध्यात्म। आत्मा के अंदर की बात बताने वाला, आदि माने अंदर, और वो ही सत्य है। शरीर विनाशी है, शरीर के पांच तत्व विनाशी है, ऐसे ही शरीर का ज्ञान भी कोई महत्व तो नहीं रखता यदि आत्मा का ज्ञान नहीं है। परंतु जैसे बीज में सारा झाड़ समाया हुआ है, सारे झाड़ का आदि मध्य और अंत बीज को देख करके कोई जान सकता है, ऐसे ही एक आत्मा है, आत्माओं का बाप, जो बीज को जानता है। इस मनुष्य सृष्टि का बीज कौन है, क्षेत्र कौन है, ये शरीर क्षेत्र है, कौन सा शरीर है, इदं शरीरं कौन्तेय क्षेत्रमित्यभिधीयते। हे अर्जुन, ये तुम्हारा जो शरीर है यही क्षेत्र है। क्षेत्र माने अभी बताया, यज्ञ कुंड है, अविनाशी रुद्र यज्ञ कुंड है, इस शरीर रूपी रथ में सारी मनुष्य सृष्टि के आदि मध्य अंत का ज्ञान भरा पड़ा है। जैसे नीम का बीज देख लो, बुद्धि में आ जाएगा इसका आदि क्या है, मध्य क्या है और अंत क्या है, ऐसे ही इस शरीर रूपी क्षेत्र का क्षेत्रज्ञ, ज्ञ माने जानने वाला, इस शरीर रूपी क्षेत्र को जानने वाला इस दुनिया में कोई मनुष्य आत्मा नहीं है। कौन है? वो चेतज्ञ। कौन? जो आत्माओं का बाप है वो क्षेत्रज्ञ है। इस शरीर रूपी क्षेत्र के आदि मध्य अंत के ज्ञान को जानने वाला है। यही रचयिता है। रचयिता साकार होता है या निराकार होता है? साकार होता है। और सृष्टि भी साकार होती है। तो साकार सृष्टि का रचयिता ये शरीर है, मैं माने वो इसे शरीर का आधार लेता है। क्या उसको अपना शरीर नहीं है? वो शरीर का आधार लेता है और उस शरीर का आधार लेकर के नई सृष्टि की रचना की, विधि विधान, प्लानिंग, ज्ञान उस आत्मा को देता है। जो मनुष्य सृष्टि का बीज है, जिसे गीता में अर्जुन कहा है, अर्जुन माने ज्ञान का अर्जन करने वाला, अर्जुन माने सदभाग्य का अर्जन करने वाला। कैसा रथ? अरे मुरलियों में कैसा रथ बताया? भाग्यशाली रथ। किस आधार पर भाग्यशाली? दुनिया में भी कोई बाप होते हैं, उनके 10 बच्चे होते हैं, उन 10 बच्चों में बड़े से बड़ा भाग्यशाली कौन सा बच्चा है? बड़ा बच्चा। हिस्ट्री में भी जो भी राजाएं हुए हैं, उन्होंने अपनी राजाई का वर्षा कौन से बच्चे को दिया? बड़े बच्चे को दिया। तो ये परंपरा भी वो आकर के डालता है। वो जब आता है तो उस मनुष्य सृष्टि में जो भी मनुष्य आत्माएं हैं, उन आत्मा रूपी भाइयों भाइयों में से जो बड़ा भाई है, उस बड़े भाई को अपने निराकारी ज्ञान का सारा वर्षा देता है। देता है या वो स्वयं लेता है? वो देता है या वो स्वयं लेता है? वो देता नहीं है, है? देता तो है, लेकिन वो सबको देता है। किसी को कम, किसी को ज्यादा, ऐसे करता है? देता तो सभी को है, लेकिन लेने वालों में, जैसे स्कूल में पढ़ाई पढ़ने वाले बच्चे होते हैं, टीचर तो सबको पढ़ाता है, लेकिन पढ़ने वाले बच्चों में कोई अव्वल नंबर, कोई लास्ट नंबर। तो ऐसे ही इस मनुष्य सृष्टि में जो भी मनुष्य आत्माएं हैं, वो तो सबको देने के लिए तैयार, सबको एक जैसा ही देता। कोई कहे अरे हम तो 80 साल के बुढ़े हो गए, हम तो पहली बार अभी ज्ञान में आए हैं, 80 साल पहले तो तुम्हारा ये भगवान बाप जिसे कहते हो वो गुप्त रूप में भी इस सृष्टि पर नहीं आया था। आया था 80 साल, 80 years बिफोर आया था? नहीं आया था। वो बुढ़ा गए, मैं 80 साल का बुढ़ा हूं, मैं पहली बार ज्ञान में आया हूं, मुझे क्यों नहीं देता सारा ज्ञान? तो बाप कहता है लास्ट सो फास्ट जा सकता है, ये ईश्वरीय ज्ञान की विशेषता है कि कोई एकदम लास्ट में आवेगा तो भी इतना फास्ट दौड़ सकता है कि वो सबसे आगे जा सकता है। कोई कहे हमको उदाहरण दो तब मानेंगे, ऐसे नहीं मानेंगे। तो देखो एडवांस ज्ञान देने वाला सुप्रीम टीचर है ना, है? एडवांस ज्ञान देने वाला सुप्रीम टीचर है ना, वो सुप्रीम टीचर है शंकर को भी ज्ञान देता है या नहीं देता है? शंकर वाली आत्मा को भी ज्ञान देता है और फर्स्ट में देता है, देता है या नहीं देता है? हैं? देता है। वो शंकर नामधारी आत्मा उसे ज्ञान लेते लेते कितने साल गुजर गए, इस जन्म में या पूर्व जन्म में जब ब्राह्मण का जन्म लिया था? है कितने साल हो गए? अरे अरे 80 ईयर्स हो गए कि नहीं? 80 ईयर्स हो गए। उस आत्मा ने भी जिसे मनुष्य शक्ति का बाप कहा जाता है, आदिदेव कहा जाता है, दूसरे धर्म में उसे आदम कहते हैं, उसने भी अभी तक 40 साल के अंदर योग बल की सिद्धि प्राप्त की है। योग बल के आधार पर जिसे राजयोग कहा जाता है उसकी सिद्धि है, राजधानी स्थापन कर पाई नई दुनिया की, नहीं कर पाई। उसके जो भी बच्चे हैं इस मनुष्य शक्ति में, चाहे वो चंद्रवंशी हो, इस्लाम वंशी हो, बौद्ध वंशी हो, क्रिश्चियन वंशी हो, कोई भी धर्म से आई हुई नौकरियों के ब्राह्मणों में से हो, कोई भी ब्राह्मण या ब्राह्मणी ने सारी दुनिया को संदेश दे पाया, दे पाया? मुक्ति और जीवन मुक्ति का वर्षा प्राप्त किया है? नहीं किया। लेकिन एक आत्मा है जब से एडवांस में आएगी और जिस समय भी आएगी उसी समय के लिए पहली अभ्यक्तवाणी में बोल दिया, भारत माता शिव शक्ति अवतार अंत का यही नारा है। वो आत्मा आएगी और अंत हो जाएगा। क्या? पुरुषार्थ का अंत हो जाएगा। पुरुषार्थ का लक्ष्य है नई दुनिया की राजधानी स्थापन करना, मुक्ति और जीवन मुक्ति प्राप्त करना। वो आत्मा कौन है जो अभी भी एडवांस में नहीं आई।
आई है? नहीं आई। कौन है? है?
तीन मूर्तियां शिव की गाई हुई हैं, ब्रह्मा, दूसरी मूर्ति शंकर और तीसरी मूर्ति अंत में विष्णु। ब्रह्मा द्वारा सुनने और सुनाने का काम हुआ, शंकर के द्वारा तीसरा नेत्र समझने और समझाने का काम हुआ, लेकिन प्रैक्टिकल में कुछ भी नहीं हुआ। प्रैक्टिकल में कोई नर से नारायण बनने में देखा जाता है, नारायण अर्थात जो प्रैक्टिकल में जिसके अंदर ज्ञान समाया हुआ हो, ज्ञान सुनना सुनाना, ज्ञान समझना समझाना, ये बड़ी बात नहीं। बड़ी बात क्या है? बड़ी बात ज्ञान को प्रैक्टिकल जीवन में इंद्रियों में धारण करना। ज्ञान कहता है कि कर्म इंद्रियों से कर्म करते हुए निरंतर एक बाप की याद में रहना। क्या ज्ञान कहता है? कर्म योगी बनना है, कर्म योगी बनना है या सिर्फ योगी बनना है या सिर्फ कर्म करना है? है? दोनों चाहिए। कर्म इंद्रियों से कर्म भी हो और मन बुद्धि से योग भी निरंतर लगा हुआ हो। ऐसी स्टेज जो भारतवर्ष में आज पूजी जा रही है हर शिव के मंदिर में, वो है शिवलिंग। जो यादगार है उस आत्मा की कि वो आत्मा शिव समान ज्योति बिंदु निराकारी निर्विकारी निरहंकारी बन जाती है, हीरा हीरो पार्टदारी, और शरीर के अंदर रहते हुए शरीर साकार है, ऐसे नहीं नहीं है। जो शिवलिंग है वो यादगार तो है, वो तो जरा यादगार है, लेकिन जो उसका असली रूप था वो जड़ लिंग था या चैतन्य शरीर था? चैतन्य शरीर था, परंतु शिवलिंग में वो हाथ पांव नाक कान क्यों नहीं दिखाए गए? क्योंकि ऐसी योग युक्त स्टेज में वो आत्मा स्थिर हो जाती है जिस स्टेज में हाथ पांव नाक आंख कान कोई इंद्रियों की स्मृति नहीं रहती, इसलिए वो इंद्रियां नहीं दिखाई गई। शरीर तो है, ऐसे नहीं शरीर नहीं है, वो बड़ा रूप साकार है, ऐसे नहीं नहीं है। जो शिव बाप कहते हैं तुम्हें छोटा रूप बिंदु नहीं याद आता है तो क्या करो, बड़ा रूप याद करो। वो बड़ा रूप जो लिंग है वो भी विनाशी है या अविनाशी है? इस सृष्टि रूपी रंगमंच पर ऑलराउंड पार्टीधारी है या नष्ट हो जाता है? ऑलराउंड पार्टीधारी है। उस बड़े रूप को भी याद करेंगे तो तुम भी ऑलराउंड पार्टीधारी बनेंगे, तुम भी अविनाशी बनेंगे, तुम्हारा पार्ट भी अविनाशी बनेगा, लेकिन जितना याद करेंगे उतना बनेगा। इसलिए बोला उस शिवलिंग में जो हीरा दिखाया गया है, हीरो पार्टधारी आत्मा की यादगार, वो हीरा निराकारी रूप में नहीं याद आता है तो क्या करो? है बड़े रूप, उसके शारीरिक रूप को ही याद करो। जो शारीरिक रूप इंद्रियों की स्मृति से परे चला जाता है, जो बोला है वो शिव ने बोला ब्रह्मा के मुख से, मैं हीरो पार्टधारी नहीं हूं, मैं तुमको हीरो पार्टधारी बनाता हूं। तो जो हीरा है शिवलिंग में, सोमनाथ मंदिर में जो हीरा था, वो किस आत्मा की यादगार है? है हीरो पार्टधारी मनुष्य आत्मा की यादगार है या आत्माओं के बाप शिव की यादगार है? मनुष्य आत्माओं के बाप की यादगार है। वो मनुष्य आत्माओं का बाप संपूर्ण ज्ञान ग्रहण करने के बाद, संपूर्ण बाप को पहचानने के बाद, संपूर्ण याद की स्थिति जिसे कहते हैं योग युक्त स्थिति, उस योग का अकूट भंडार बनता है, वो ज्ञान का भंडार। आत्माओं का बाप निराकार आत्माओं का बाप, निराकारी ज्ञान का अकूट भंडार, और उस निराकारी ज्ञान को जो इस मनुष्य सृष्टि में साकार मनुष्य उठाता है, संपूर्ण ज्ञान उठाता है, अकूट भंडार को भी उठा लेता है, जो बाप कहते हैं कि मैंने अपने पास कुछ नहीं रखा, वो शिव बाप क्या कहते हैं? मैंने कोई ज्ञान का पॉइंट अपने पास छुपा के नहीं रखा, मैंने सारा ज्ञान तुम बच्चों को दे दिया, अखूट ज्ञान का भंडार दे दिया। भले उसके लिए ये गायन है कि उसके पास ऐसा अखूट ज्ञान का भंडार है जो कभी खूटता ही नहीं, कोई सारा का सारा अखूट भंडार उठा ले जाए तो भी अखूट बचता है। ये शास्त्रों में गायन है, पूर्णमिदं पूर्णमदः पूर्णात् पूर्णम् युदच्यते, पूर्णस्य पूर्णमादाय तो भी पूर्णेवावशिष्यते। उस पूर्ण में से कोई पूरा ही उठा ले तो भी पूरा ही बचता है। वो ज्ञान का अकूट भंडार है, लेकिन उस ज्ञान के आधार पर जो योग लगाने की कला सीख लेता है वो संपूर्ण योगी बनता है, वो संपूर्ण योगी है। या नीचे सृष्टि पर पार्ट बजाने वाला कोई मनुष्य आत्मा संपूर्ण योगी बनता है? योगी कौन है? वो या वो है? वो अगर योगी है तो किससे योग लगाता है? वो अगर योगी है तो उससे भी बड़ा कोई है या नहीं जिसे योग लगाता है? लेकिन उसका तो कोई बाप है ही नहीं, उससे बड़ा कोई है ही नहीं, वो किससे योग लगाएगा? उसे योग लगाने की दरकार नहीं है। वो ही सच्ची पर जब आता है तो जिस मुकर्रर रथ में प्रवेश करता है वो भोगी बन जाता है।
भोगियों का बाप बन जाता है
या सिर्फ भोगी बन जाता है? है? अरे वो क्या बन जाता है? भोगियों का बाप है जो बोला है ब्रह्मा मुख से, ब्रह्म वाक्य बोला है, जिसे हम मुरली कहते हैं। दुनिया की ऐसी कोई बात नहीं जो तेरे पर लागू न होती हो। तेरे मैंने कोई एक की तरफ इशारा किया क्या? इस दुनिया में अगर कोई मास्टर शक्तिवान सर्वशक्तिवान बनता है तो वो तू है। दुनिया की कोई ऐसी बात नहीं जो तेरे पर लागू न होती। इसलिए बोला इंटरफियर करके वो आत्मा बोलती है, बाप की वाणी के साथ बोलती है। क्या नरक की दुनिया मेरी है तो स्वर्ग की दुनिया मेरी नहीं है क्या? किसने बोला? कौन सी आत्मा ने बोला? अरे इस शशि रूपी रंगमंच पर कौन सी आत्मा है जिसका आधिपत्य स्वर्ग की दुनिया पर भी है और जिसका आधिपत्य नरक की दुनिया पर भी है? इस नरक की दुनिया में भी कोई भी जन्म में उस हीरो पार्टधारी को कोई कास नहीं कर सकता। क्या ज्ञान के क्षेत्र में भी क्रॉस नहीं कर सकता किसी भी जन्म में? साहित्य के क्षेत्र में क्रॉस नहीं कर सकता? वीरता के क्षेत्र में भी कोई क्रॉस दुनिया में नहीं कर सकता? दुनिया के बड़े बड़े आतताई इस भारत में आए, हिंसक रूप में आक्रामक बनकर के आए, लाखों लाख की सेना लेकर के आए, बड़े बड़े हट्टे कट्टे नौजवान लेकर के आए, और इस भारत में आकर के नाक रगड़ के गए, दूध चाट के गए, हार के गए, जीत के नहीं जा पाए। हिस्ट्री में देख लो, तो उस समय की हिस्ट्री में उन वीरों को रास्ता दिखाने वाला कोई था या नहीं था? है जिसे कहते हैं महावीर, महारथी नहीं, घोड़े सवार नहीं, ऊंट सवार नहीं, वीरों में महावीर बाबा ने बोला। जिस वीर बाबा की पूजा आज भी माउंट आबू पहाड़ पर आदिवासियों के द्वारा की जाती है, तो ऐसा हीरो पार्टधारी है जिसके लिए ब्रह्म वाक्य है। ब्रह्मा के द्वारा मुरली में ही बोला, याद है क्या बोला? है इस सृष्टि पर सदा कायम कोई चीज है नहीं, सदा कायम एक ही शिव बाबा है। शिव बाप नहीं, कौन सदा कायम है? शिव बाबा इस सृष्टि पर सदा कायम है। और शिव बाबा जो इस सृष्टि पर सदा कायम है, वो ऊंचे से ऊंचा पार्ट ही बजाएगा या नंबरवार पार्ट बजाएगा? ऊंचे से ऊंचा पार्ट ही बजाता है। बल 84 जन्मों में गुप्त पार्ट बजाता है। क्या प्रत्यक्ष पार्ट नहीं बजाता, सिर्फ अंतिम जन्म में संसार के सामने प्रत्यक्ष होता है। जिसको कहा जाता है कालों का काल, महाकाल, जिसको कोई काल खा नहीं सकता। सारी दुनिया उस साकार सुनिराकार रूप को पहचानती है। क्या हिंदू, क्या मुसलमान, क्या सिख, क्या ईसाई, नास्तिक से नास्तिक व्यक्ति इस दुनिया का क्यों न हो, वो भी अंत समय में कहेगा ओ गॉड फादर मेरी रक्षा कर। तो इस मनुष्य शक्ति की हर आत्मा उस साकार सो निराकार जो शशि रूपी झाड़ के ऊपर बैठा हुआ दिखाया गया, उसी की याद में शरीर छोड़ेगी। क्योंकि निराकार बिंदु को याद करना सहज है या साकार को याद करना सहज है? उस साकार स्वरूप को ही याद करेगी। जो साकार स्वरूप सारी मनुष्य शक्ति का बीज है, इसलिए बताया कि मुझे याद करो। किसने बताया, कौन सी आत्मा ने बताया? मनुष्य शक्ति के बाप ने कहा मुझे याद करो। तो तुम्हारा विकर्म विनाश हो जाएगा। माना तुमने जितने भी पाप कर्म किए हैं जन्म जन्मांतर, वो सारे पाप भस्म हो जाएंगे। किसकी याद में रहने से? है उस संपूर्ण स्वरूप ज्योतिर्लिंगम शिव की याद में रहने से। उस स्टेज में उसके ऊपर उसमें कोई पाप रहता है? है जब ज्योतिर्लिंगम स्वरूप धारण कर लेता है तो उसमें कोई पाप रहता है? नहीं रहता, निष्पाप हो जाता है ना। तो उसकी याद में जो भी रहेगा वो भी क्या बनेगा? निष्पाप बनेगा, उसके भी विकर्म भस्म हो जाएंगे। क्योंकि इस बात को इस दुनिया में तुम बच्चों के सिवाय कोई दूसरा धर्म वाला नहीं समझता। क्या कहा? इस बात की गहराई को संघ का रंग ऐसी विशेष बात है। बुद्धि से मन बुद्धि से संघ का रंग ऐसा लगता है उसकी याद में कि कोई भी पाप आत्मा में रह नहीं जाता।
ये बात दुनिया में दूसरे धर्म की आत्माएं नहीं जानती, जानती नहीं है तो उस स्टेज में टिकती भी नहीं। तुम बच्चे जानते हो कि वो निष्पाप रूप इस मनुष्य सृष्टि में पहले पहले कौन बनता है? तुम्हारी बुद्धि में है कि सूर्यवंशी राम गाया हुआ है, इसलिए पतित पावन सीताराम का गायन है, जो पतित पावन कह करके मुझे बुलाते नहीं, वो पतित से पावन बनते भी। जो पतित पावन सीताराम की याद करके बुलाते हैं, क्या 2500 वर्ष के भक्ति मार्ग में भी बुलाते हैं और संगम युग में भी बुलाते हैं या नहीं बुलाते हैं? है? जैसे ब्रह्मा कुमार कुमारी गुलजार दादी में ब्रह्मा बाबा को बुलाते हैं, आ जाओ ब्रह्मा बाबा हम बच्चों के आगे, बुलाते हैं कि नहीं? है, वो ब्रह्मा बाबा को बुलाते हैं। शिव बाप मुरली में कहते हैं अम्मा से कोई वर्षा नहीं मिलता, इस ब्रह्मा से कोई वर्षा नहीं मिलता, वर्षा बाप से मिलता है। उस मनुष्य सृष्टि के बाप को पहचानो, उससे ही मनुष्यों को वर्षा मिलता है। तो देखो, दुनिया के और धर्म वाले जो धर्म पिताओं के बाद इस सृष्टि रूपी रंगमंच पर आते हैं, अथवा जो धर्म पिताओं के आने के बाद भारतवासी आत्माएं उन धर्मों में कन्वर्ट हो जाते हैं, वो सभी आत्माएं दूसरे धर्मों का संग का रंग लेती हैं या नहीं लेती हैं? है? लेती हैं या नहीं लेती? लेती हैं, इसलिए वो पति से पावन बनती नहीं। क्यों नहीं बनती? क्योंकि शिव बाप कहते हैं एक से ज्ञान सुनना चाहिए, अनेकों से ज्ञान सुना तो व्यभिचारी ज्ञान हो जाएगा, और जिनका ज्ञान व्यभिचारी हो जाएगा उनको व्यभिचारी धर्मों में कन्वर्ट होना पड़ेगा। तो जो आत्माएं अभी संगम युग में एक बाप को पहचान लेती हैं और पहचान करके फिर दूसरों दूसरों से सुनती हैं, क्या दूसरे दूसरों का ज्ञान सुनती हैं तो उनका ज्ञान विविचारी बन जाता है, वो आत्माएं दूसरे धर्मों में कन्वर्ट हो जाती हैं। इसलिए भक्ति मार्ग में कहते हैं सदगुरु निंदा सुनिए न काना, क्या सदगुरु की निंदा कान से भी नहीं सुननी चाहिए, होय पाप गौ घात समाना। अगर सुनते हैं तो सुनने का भी पाप जैसे गौ की हत्या कर दी, ऐसे पाप बन जाता है। भक्ति मार्ग में तो वो जानवर गौ को समझते हैं, ये जानवर गऊ की बात नहीं है, ये ह्यूमन गऊओं की बात है। जो ह्यूमन गऊएं भगवान के रूप में कृष्ण के साथ दिखाई जाती है, भगवान के रूप में कृष्ण का नाम डाल दिया। वास्तव में ये ह्यूमन गऊओं की बात है, जो ईश्वरीय ज्ञान में सरेंडर होती है, ईश्वर बाप की बनती है, ईश्वर बाप से सर्व संबंध जोड़ करके गोपी का पार्ट बजाती है, गुप्त संबंध जोड़ती है, दूसरे धर्मों में कन्वर्ट होने वाली आत्माएं इस राज को नहीं जान पाती, इसलिए वो आत्माएं दूसरों का ज्ञान भी सुनने लग पड़ती हैं और दिल लगा के सुनती हैं, तो दूसरे धर्मों में कन्वर्ट हो जाती है। जो दूसरे धर्मों में कन्वर्ट हो जाते हैं वो फिर बाप को नहीं बुलाते, और तुम बच्चे, तुम्हारे दिल में आता है बाबा आ जाओ, लंबा टाइम हो गया। तुम्हारा दिल बुलाता है तो तुम पतित से पावन बनते हो, जो बुलाते ही नहीं वो पतित से पावन बनते ही नहीं। तो मैं जब आकर के खुद कहता हूं कि मुझे याद करो, मैं तुम्हारा बाबा हूं, ग्रैंडफादर हूं, अरे जो कहने वाली आत्मा है कौन सी कहती है मैं तुम्हारा बाबा हूं, कौन सी आत्मा कहती है मैं तुम्हारा बाबा हूं? आत्माओं का बाप कहता है या मनुष्य आत्माओं का बाप कहता है? मनुष्य आत्माओं का बाप, मनुष्य आत्माओं का जो बाप है वो ग्रेट फादर्स का बाप है, सभी धर्म वालों का बाप है या ग्रैंडफादर है? ग्रैंडफादर तो कहते हैं बापों का बाप, क्या बापों का भी बाप? तो ग्रैंडफादर कौन आत्मा है? जब निराकारी धाम में है तो सिर्फ आत्माओं का बाप है, जब साकार सृष्टि पर आती है तो साकार मनुष्य के द्वारा ग्रैंडफादर है। क्या है? क्या है? ग्रैंडफादर। कैसे? वो साकार मनुष्य बाप समान बन जाता है, शिव बाप समान निराकारी निर्विकारी निरहंकारी बन जाता है, और जब ऐसी स्टेज धारण करता है तो वो मुक्ति और जीवन मुक्ति को देने वाला ग्रैंडफादर है। इस मनुष्य सृष्टि की हर आत्मा को वर्षा देता है। कौन सा वर्षा? मुक्ति और जीवन मुक्ति का वर्षा देता है। जो वर्षा धर्म पिताएं नहीं दे सकते, क्या मुक्ति का वर्षा धर्म पिताएं नहीं दे सकते? कौन देता है? अरे धर्म पिताओं में जो अव्वल नंबर का धर्म पिता है वो कौन है? है? अरे भूल गए, अव्वल नंबर का धर्म पिता कौन? जो सत्य सनातन धर्म की स्थापना करने वाला है वो कौन? सनत कुमार। और सनत कुमार को योगीश्वर ज्ञानेश्वर कहा जाता है। दूसरी ओर शंकर को भी योगीश्वर कहा जाता है। तीसरी ओर शास्त्रों में कृष्ण को भी क्या कहा? राजयोगी कहा गया, योगियों का राजा। तो क्या तीन तीन योगीश्वर होते हैं? योगियों का ईश्वर एक होगा या तीन होंगे? हैं? एक होगा। इसका मतलब क्या हुआ कि सनत कुमार उसे कहो संगमयुगी कृष्ण कहो या शंकर कहो, वो तीनों आत्मा एक ही आत्मा है, अलग अलग पार्ट नहीं है। जैसे शिव बाप कहते हैं, बाप को याद करो, स्वर्ग को याद करो, अपने घर को याद करो, आत्माओं के घर को। तो तीन तीन को याद करें या एक शिव बाबा दूसरा न कोई है? एक शिव बाबा दूसरा न कोई, एक को याद करें या तीन को याद करें? फिर ये तीन क्यों कहा? क्योंकि वो तीन भी एक ही है। उस एक में बाप भी है, उसमें शिव बाप भी है, उसमें मनुष्य सृष्टि का बाप भी है, उसमें सुख का वर्षा भी समाया हुआ है। क्या वो सुख का सागर है? क्या है? सुख का सागर है। कहीं गाया जाता है दुख का सागर है, सुख का सागर है। 80 साल हो गए पार्ट बजाते बजाते साकार में, भले गुप्त पार्ट बजाता है, अभी संसार के सामने प्रत्यक्ष नहीं है, पर्दे के पीछे है, तो भी बच्चों को सुख ही देता है या दुख देता है? बच्चे उसकी बात को अब तक भी नहीं मानते। क्या उसकी सीमत को फॉलो करते हैं बच्चे? करते हैं? कोई करता हो तो हाथ उठाओ। नहीं करता ना, अंदर से जानते हैं बाप की सीमत पर हम चल नहीं पा रहे, चाहते हैं चलना लेकिन चल नहीं पाते। तो बाप नाराज होता है कभी है? सामान्य बाप होते हैं दुनिया में, कोई बच्चा बार बार अवज्ञा करता है तो झुंझला के दो चार थप्पड़ मार देगा, पिटाई कर देगा या नहीं कर देगा? बड़ा बच्चा है तो घर से निकाल देगा या नहीं निकाल देगा? घर से भी निकाल देता है। देखो जो भी यहां बैठे हैं उसमें मोस्टली तो ऐसे हैं जो पहले ब्रह्मा कुमार थे। किसके कुमार थे? ब्रह्मा कुमार। ब्रह्मा को ही अपना माई बाप मानते थे। मानते थे या नहीं? मानते थे। ब्रह्मा ने सब बच्चों को जो एडवांस ज्ञान में आ गए राम को बाप मानने लगे। ब्रह्मा ने उन बच्चों को ब्राह्मण परिवार से बाहर कर दिया या अंदर रखा है? अरे अंदर रखा है या बाहर कर दिया है? अपनी फैमिली में अंदर रखा ब्रह्मा ने, दादा लेकर आज ब्रह्मा और उनके जो भी चहेते बच्चे हैं ब्रह्मा कुमार कुमारी उस परिवार ने तुम बच्चों को अपने परिवार में जगह दी या नहीं दी है? नहीं दी जगह। कोई बच्चा ऐसा हो कि हमको जगह दी है तो हाथ उठाओ है? नहीं जगह दी। तो देखो ब्रह्मा बाप ने तुमको निकाल दिया, लेकिन मुरली में बाबा पूछते हैं ब्रह्मा का बाप कौन? माने ब्रह्मा का भी कोई बाप है या नहीं है? था। जिसने ब्रह्मा वाली आत्मा दादा लेखराज को भी अपने स्वरूप का ज्ञान दिया कि तुम सतयुग में पहला पत्ता सृष्टि का बनने वाले हो, कृष्ण बच्चा। सतयुग का नारायण बनेंगे, सतयुग का फर्स्ट नारायण। और उनकी बुद्धि में ये बात बैठ गई, परंतु ये बात नहीं बैठी कि जिसने परिचय दिया वो ही हमारा बाप है, ये बुद्धि में नहीं बैठा। क्यों नहीं बैठा? क्योंकि जिसने परिचय दिया वो दादा लेखराज की दुकान में उनका नौकर था, मैनेजर था, तो दास दासी था या नहीं था? हैं? दास था। और जो देहधारी होते हैं उनको देह अहंकार जरूर होता है, वो देह अहंकार ने उस भागीदार को अपना बाप स्वीकार ही नहीं कर पाया, वो बाप को नहीं पहचान पाया। तो उसे वर्षा मिलेगा है? इस जीवन में वर्षा मिलेगा है? नहीं मिल सकता। उसके फॉलोअर्स को भी इस जीवन में वर्षा मिलता है, है? नहीं मिलता। अगला जन्म होगा तब अपने बाप से वर्षा पाएगा, तो बाप को पहचानेगा तब पाएगा या बिना पहचाने पाएगा? बाप को पहचानेगा, मानेगा, अहंकार को त्यागेगा कि मैं गीता का भगवान गीतापति नहीं हूं है, मेरा बाप ही गीता का भगवान गीतापति है। इस बात को स्वीकार करेगा तभी इस संगम युग में शूटिंग होगी उस आत्मा की कि वो सतयुग में बाप का बच्चा बने और बाप से प्रैक्टिकल में बरसा ले। सतयुग की बात चाहिएगा। तो बाबा कहते मैं तुम्हारा बाबा हूं, ग्रैंडफादर हूं। क्या? मैं तुम्हारा ग्रैंडफादर हूं, कृष्ण तुम्हारा बाबा नहीं है। माने कृष्ण वाली सोल तुम्हारा बाबा नहीं है। कृष्ण वाली सोल में इस जन्म में बल मैं आत्माओं का बाप आता हूं, आता है कि नहीं? ब्रह्मा नाम भी देता है, मैं जिस तन में प्रवेश करता हूं उसका नाम ब्रह्मा रखता हूं, तो ब्रह्मा नाम दिया। लेकिन ब्रह्मा का अर्थ ही है ब्रह्मा ने बड़ी माँ माने माँ, वो तुम्हारी माँ तो है प्रैक्टिकल में, लेकिन बाप नहीं है वर्षा देने वाला, वो ब्रह्मा जीवन रहते तुमको कोई प्रकार का वर्षा दे करके नहीं गया, और अपने परिवार के ब्राह्मणों में भी कोई भी ब्रह्मा कुमार कुमारी को कोई वर्षा देकर नहीं गया। दिया मुक्ति जीवन मुक्ति का वर्षा दिया नहीं दिया, तो कृष्ण तुम्हारा बाबा नहीं है, कृष्ण वाली आत्मा तुम्हारा बाप तो थी, तुम मानते थे कि वो कृष्ण वाली आत्मा इस जीवन में दादा लेखराज ब्रह्मा के रूप में हमारा बाप थी, तुम मानते थे कि वो हमारा बाप भी वो हमारा माँ भी, जैसे ब्रह्मा कुमार कुमारियां किसको माँ बाप मानती है, दादा लेखराज को ही माँ भी मानती और बाप भी मानती, ऐसे ही तुम भी मानते थे। ब्रह्मा विष्णु शंकर ये तुम्हारे वास्तव में बाबा नहीं है क्या, न ब्रह्मा तुम्हारा बाबा है ग्रैंडफादर जिससे तुम्हें लाजमी वर्षा मिल रहा है, वो बाबा नहीं है, विष्णु तुम्हारा बाबा नहीं है, शंकर भी तुम्हारा बाबा नहीं है, क्या कौन है बाबा, शंकर पुरुषार्थी है या संपन्न है, पुरुषार्थी है, तो जो स्वयं पुरुषार्थी है वो तुम्हें राजाई का वर्षा कैसे देगा, वो स्वयं राजाई पाने का पुरुषार्थी है, राजाई देने वाला नहीं है, पुरुषार्थ कर रहा है याद का पुरुषार्थ कर रहा है। चार सब्जेक्ट हैं, ज्ञान याद सर्विस धारणा, तो वो सबसे जाती कौन से सब्जेक्ट का पुरुषार्थ करता है, है याद का पुरुषार्थ करता है, वो पुरुषार्थी है लेकिन पुरुषार्थ कराने वाला नहीं है, तो कौन कराता है पुरुषार्थ है? है? हाँ, शिव की आत्मा प्रवेश करके पुरुषार्थ कराने वाली है साकार के द्वारा, हाँ पुरुषार्थ करने वाला कोई अव्वल नंबर पुरुषार्थी ऐसा निकले जो याद के आधार पर संपन्न स्टेज याद की प्राप्त कर ले, जिसे कहेंगे संपूर्ण योगी, उस योगी में वो शक्ति आती है जो बाप से वर्षा में मिलती है, क्या शक्ति आती है, ज्ञान के आधार पर वो योग की शक्ति आती है, सर्वशक्तिवान मास्टर सर्वशक्तिवान, शिव बाप कहते हैं मैं शक्तिवान तो हूं लेकिन मास्टर सर्वशक्तिवान नहीं, मास्टर उसे कहा जाता है जो प्रैक्टिकल में करके दिखाए, तो शिव बाप की आत्मा प्रैक्टिकल करके दिखाती है या शिव बाप जिसमें प्रवेश करता है वो प्रैक्टिकल करके दिखाता है, है? वो प्रैक्टिकल करके दिखाता है, जो बोलता भी है तुम ब्राह्मणों का संगठन ऐसा पावरफुल संगठन बन जाएगा कि कोई भी विकारी इस ब्राह्मणों के संगठन में पांव नहीं रख सकेगा। ऐसे संगठनों को कहेंगे नई दुनिया की राजधानी। ऐसी नई दुनिया की राजधानी सशक्त होगी जिसमें एक भी विधर्मी आत्मा, चाहे विधर्म की पक्की हो और चाहे विधर्म की कच्ची हो, कच्ची माने कन्वर्ट होने वाली, जैसे उन धर्मों में कन्वर्ट हुए थे, भगवान बाप के आने पर सनातन धर्म में कन्वर्ट हो जाते हैं। कन्वर्ट होने वाली आत्माएं कच्ची आत्माएं अपने धर्म की। तो तुम बच्चे अभी जानते हो कि ये ब्रह्मा विष्णु शंकर तुम्हारा बाबा नहीं क्या? हाँ, ये शंकर वाली आत्मा पुरुषार्थ करते करते आखिरी कौन सी स्टेज पकड़ेगी? है? बाप समान स्टेज पकड़ लेगी। बाप समान बड़ा बच्चा कहा जाता है या बाप कहा जाता है? है? बाप समान कहा जाएगा, बाप थोड़े कहा जाएगा। तो बाप समान स्टेज माना शिव समान स्टेज। शिव बाप समान निराकारी निर्विकारी निरहंकारी स्टेज, क्योंकि ब्रह्मा विष्णु शंकर सबका बाबा नहीं है। क्या जिनका है उनकी भक्ति मार्ग में यादगार है फॉलोअर्स की, ब्रह्मा के फॉलोअर्स की यादगार है ब्रह्म समाजी, विष्णु के फॉलोअर्स की यादगार है वैष्णवपंथी, और शिव को फॉलोअर्स की यादगार है शैव समाजी। तीन संप्रदाय भारत में प्रसिद्ध हैं, परंतु वो अपने अपने ग्रुप के बाबा हैं, सबके बाबा नहीं। सबका तो वो एक ही है, वो सबका तो वो एक ही है, मैं नहीं। किसने बोला? कौन बोल रहा है? 67 की वाणी है, 67 की। सुप्रीम सोल बोलता है वो सबका बाबा है, एक है वो निराकार, क्योंकि उनसे ही मिलना है सबको, उनसे ही मिलकर एक होना है। वो निसंकल्प बनेगा तो सबको क्या बनना पड़े? है निराकारी निसंकल्प बनना पड़े या नहीं बनना पड़े? बनना पड़े, उनसे ही मिलना है। ये नहीं कहा उससे मिलना है। उससे क्यों नहीं कहा? उनसे कह करके रिगार्ड से क्यों बोला? है? है? इसलिए रिगार्ड से बोला कि शिव बाप कहते हैं मैं तुम बच्चों का ओबीडेंट सर्वेंट हूं। तो जो सर्वेंट होता है, जिसका सर्वेंट होता है, उसके प्रति रिगार्ड के शब्द बोलता है या डिसरिगार्ड में उससे बोलेगा? है? उससे माना डिसरिगार्ड और उनसे माना रिगार्ड से बोला। उनसे मिलना है, उनसे मिलकर के एक होना है। आत्माएं परमात्मा में लीन हो जावे। लीन होना माने मिलना हुआ या नहीं हुआ है? मैं तुम में समा जाऊं, तू मुझ में समा जाए। तेरे संकल्प और मेरे संकल्प एक हो जाए, कोई अंतर न रहे। जैसे लक्ष्मी और नारायण, शंकर और पार्वती दोनों की आत्माएं मिलकर के एक समान बन जाती हैं या अलग अलग रहती हैं? है एक समान बन जाती है। दोनों जब मिलती हैं तो विष्णु कहा जाता है, परम पद वही परमात्मा इति उदाहरण कहा जाता है। परमात्मा परम पद धारी कब? जब स्त्री और पुरुष दोनों के संस्कार, दोनों के संकल्प, दोनों के वाइब्रेशन, दोनों की दृष्टि, दोनों की वृत्ति, दोनों की वाचा, दोनों की कर्मेंद्रियां एक हो के काम करें कि एक एक चाहता है दूसरा दूसरा चाहता है, एक एक बोलता है दूसरा दूसरा बोलता है, एक का एक वाइब्रेशन दूसरे का दूसरा वाइब्रेशन, तो झगड़ा होगा या एक होके रहेंगे? झगड़ा हो जाएगा। विष्णु फरिश्ता कहा ही तब जाता है जब स्त्री पुरुष दोनों के संस्कार मिलकर के एक हो जाए, स्वभाव भी मिलकर के एक हो जाए। तो जब माता पिता के संस्कार मिलकर के एक होंगे तो बच्चों के भी एक हो जाए। सारी मनुष्य शक्ति की सभी मनुष्य आत्माओं के संस्कार, सभी मनुष्य आत्माओं के संकल्प, सभी मनुष्य आत्माओं के वाइब्रेशन, सभी मनुष्य आत्माओं की वाचा एक ही बात बोलेगी। क्या क्या बात बोलेगी? एक सच्चा और दुनिया में सात सात झूठे। वसुधैव कुटुंबकम बनेगा, सारी वसुधा सारी दुनिया एक कुटुंब एक परिवार होगा। जो मुखिया बोलेगा वो ही परिवार का हर सदस्य बोलेगा, एक वाचा एक धारणा एक का राज्य, उसे कहते हैं अद्वैत। द्वैत माने दो दो, अद्वैत माने एक। देवताओं को कहते हैं अद्वैत। क्या देवताओं को कहते हैं? अद्वैत। और राक्षसों को कहते हैं द्वैतवादी। दो दो धर्म द्वैतवादी द्वापर युग से, दो दो राज्य दुनिया में हो जाते हैं, दो दो भाषाएं हो जाती हैं, दो दो कुल दो दो मतें हो जाती हैं, एक बात रहती ही नहीं, क्योंकि अलग अलग बाप हो गए। द्वापर युग से इब्राहिम आया, दूसरा धर्म पिता आ गया। पहले एक ही धर्म था, उसके आने से दुनिया में दो धर्म हो गए। तो देखो ये राक्षसी राज्य है। क्या देवताओं का राज्य नहीं, दैत्यों का राज्य है। किसका राज्य? दैत्यों का राज्य है। तो तुमको अनेकता में नहीं रहना है, एक होकर चलना है।
कोई भी दुनिया में फिर ब्रह्मा को हेवनली गॉड फादर नहीं कहेगा। क्या ब्रह्मा हेवन स्थापन करने वाला है ऐसा कोई नहीं कहेगा। अभी तो ब्रह्मा कुमार कुमारियां क्या कहते हैं, ब्रह्मा हेवनली गॉड फादर है या नहीं है, वो कहेंगे है, वो ही स्थापन करता है हेवन। फिर क्या होगा, महामृत्यु का समय जब आएगा, सारी सृष्टि का विनाश सामने होगा, तब सारी दुनिया कहेगी न ब्रह्मा है हेवनली गॉड फादर है। चंद्रवंशियों का फादर हो सकता है लेकिन हेवनली गॉड फादर नहीं हो सकता, न इब्राहिम हेवनली गॉड फादर, न बुद्ध, न क्राइस्ट, कोई भी हेवनली गॉड फादर नहीं। हेवनली गॉड फादर सिर्फ एक है, स्वर की स्थापना करने वाला, जो स्व माने आत्मा, ग माने गया, जो आत्मिक स्थिति में आत्मिक स्टेज में चला गया, देह की स्थिति को त्याग दिया, देवान खत्म हो गया, आत्माभिमानी निरंतर बन गया, वो है हेवनली गॉड फादर। क्योंकि वो ही बड़ा है। क्या इस मनुष्य शक्ति का बड़ा कौन है, हेवनली गॉड फादर, जो हेवन की प्रैक्टिकल में स्थापना करता है। हेवन माने स्वर्गीय संगठन, जो संपूर्ण ब्राह्मणों का संगठन बनता है, संपूर्ण ब्राह्मण सो देवता, क्या पूर्ण ब्राह्मण सो देवता, संपूर्ण ब्राह्मण सो देवता, जो संपूर्ण ब्राह्मण बनते हैं उन संपूर्ण ब्राह्मणों को अब्बल नंबर ब्राह्मण चोटी से वर्षा मिलेगा कि नंबर वार जो ब्राह्मण बनते हैं उनसे वर्षा मिलेगा। एक है ब्राह्मण चोटी, क्या जो बोला सारी दुनिया के मनुष्य मात्र जब विकारों की दलदल में पूरे ही डूब जाते हैं तब मैं चोटी पकड़ करके उठाता हूं। क्या क्या पकड़ के उठाता हूं, चोटी पकड़ करके उठाता हूं। तो चोटी का ब्राह्मण कौन है, जिसके लिए गायन है पहला ब्राह्मण सो पहला देवता, महादेव पहला देवता सो पहला क्षत्रिय, पहला क्षत्रिय सो पहला वैश्य, पहला वैश्य सो पहला शूद्र, जो अब्बल नंबर शूद्र सो अब्बल नंबर फिर ब्राह्मण। बताओ ब्राह्मणों की हिस्ट्री में देखो, पहला ब्राह्मण कौन हुआ जो ब्रह्मा से पैदा होता है, प्रैक्टिकल ब्रह्मा। और प्रैक्टिकल ब्रह्मा के मुख से सुनता है तो ब्रह्मा मुख वंशावली ब्राह्मण बनता है, मुख वंशावली नहीं मुख से सुनता है। बताओ वो ब्रह्मा कौन, कौन है वो ब्रह्मा, प्रजापिता ब्रह्मा। अरे वो ही चोटी का ब्राह्मण परम ब्रह्म है, जब दादा लेखराज के साक्षात्कारों को जिस व्यक्ति ने सुनाया प्रैक्टिकल में, वो व्यक्ति किसी से साक्षात्कार सुनता है, साक्षात्कार की बात को कौन सुनाता है उसे, कोई सुनाता है कि नहीं सुनाता है? हैं? गीता माता सुनाती है। जो सुनने में और सुनाने में क्या बड़ी सिद्ध है, इस बात में सुनने में सुनाने वाचा में बड़ी तीखी वाक देवी कहा जाता है। किसको? सरस्वती को। क्या कहते हैं? वाक देवी, वाचा की देवी। तो उस माता के द्वारा जो ब्राह्मण चोटी बनता है वो सुनता है, उस माता के मुख से सुनता है, साक्षात्कारों की बात को सुनता है और सुनने के साथ साथ समझ सकता है या नहीं समझ सकता है, सुनता भी है और समझता भी है, इसलिए वो पहला ब्राह्मण है, चोटी का ब्राह्मण। उससे पहले कोई भी ब्राह्मण नहीं। जो चोटी का ब्राह्मण है उसकी यादगार है दुनिया में सबसे ऊंची चोटी, बताओ दुनिया की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? हैं? एवरेस्ट चोटी। वो सब ब्राह्मण चोटी की यादगार है, सारी दुनिया क्या होगा, जलमयी में डूब मरेगी। क्या? एटमिक एनर्जी फटेगी, दुनिया में आग ही आग हो जाएगी, पृथ्वी डोल जाएगी, बड़े बड़े भूकंप लाएगी, भूकंपों में से पृथ्वी के अंदर जो आग भरी पड़ी है वो बाहर फूट पड़ेगी, एटम बमों की आग, भूकंपों की आग, और सूर्य जोर से तपेगा। अभी भी सूर्य की गर्मी बढ़ रही है या घट रही है? बढ़ती चली जाएगी, तो इतनी भयंकर गर्मी हो जाएगी सारी सृष्टि पर, उसमें नॉर्थ पोल और साउथ पोल में पृथ्वी के ठेठ उत्तर में ऊंचे ऊंचे पहाड़ हैं बर्फ के, मीलों ऊंचे, वो गर्मी में दरक जाएंगे, नहीं समझ में आया, फट पड़ेंगे बर्फ के पहाड़ फटेंगे और समंदर में तैरने लगेंगे, समंदर का जल स्तर ऊंचा उठेगा, पृथ्वी डोलेगी तो दूसरे जो ग्रह हैं छोटे बड़े वो भी डोलेंगे, और उस पृथ्वी के डोलने से पृथ्वी की गोद में पलने वाला जो उपग्रह है, पृथ्वी का कोई उपग्रह है? पृथ्वी का बच्चा चंद्रमा, पृथ्वी के डोलने से डोलेगा और घबरा करके पृथ्वी की गोद में आ जाएगा। प्रशांत महासागर से जुड़ जाएगा तो प्रशांत महासागर का जल स्तर और ऊंचा उठेगा या वैसा ही रहेगा? और ज्यादा ऊंचा उठेगा। नॉर्थ पोल के मीलों ऊंचे बर्फ के पहाड़ समंदर में जा गिरेंगे तो समंदर का स्तर और ऊंचा जाएगा, और दूसरे एटम बमों की गर्मी और भूकंपों की गर्मी से और सूर्य की गर्मी से समंदर का जो पानी है वो बॉइल्ड हो जाएगा, बॉइल्ड वाटर, सारी पृथ्वी पर बॉइल्ड वाटर भाप बन करके लगातार उड़ता रहेगा। मूसलाधार बरसात होगी, क्या मूसलाधार बरसात में जल का स्तर और बढ़ेगा या कम होगा? और बढ़ेगा। उस जलमयी में दुनिया के जो भी रहे बचे प्राणी हैं, एटमिक विस्फोट के बाद वो भी जलमयी में बह जाएंगे, खलास हो जाएंगे। सारी दुनिया के महाद्वीप जो पहले 2500 साल पहले थे ही नहीं, विनाशी धर्मखंड हैं, इसलिए वो फिर जल में समाधि ले जाएंगे। विनाशी धर्मखंड खलास हो जाएंगे, समंदर में समा जाएंगे। उन महाद्वीपों में जो भी पहाड़ हैं, ऊंचे ऊंचे पहाड़ हैं ना, वो सब जलमयी हो जाएगी। एक भारत में पहाड़ है, सबसे ऊंचा पहाड़ दुनिया में कौन सा? हिमालय पहाड़। और उसकी सबसे ऊंची चोटी है दुनिया में, सबसे ऊंची चोटी कौन सी? एवरेस्ट चोटी। सारी दुनिया जलमयी होगी, एवरेस्ट की चोटी बचेगी, वो जड़ चोटी है। और चैतन्य चोटी है मनुष्य शक्ति का बाप, वो एक बचेगा। तो देखो जो बताया, कि 100 साल का पुरुषोत्तम संगम युग है, वो तो किसके लिए बताया? चैतन्य आत्माओं के लिए बताया, कि जड़ तत्वों के लिए बताया? चैतन्य आत्माओं के लिए बताया, कि 100 साल का वो टाइम है सुधरने का। आत्माओं में भी, प्राणियों में भी, मनुष्य मन बुद्धि वाला प्राणी है, तो कौन पहले सुधरेगा? पशु सुधरेंगे, पक्षी सुधरेंगे, कीड़े मकोड़े सुधरेंगे, या मनुष्य पहले सुधरेगा? हैं? मनुष्य में मन बुद्धि होने के कारण मनन चिंतन मंथन करके वो अपने आत्मा के पार्ट को पहचानेगा। हर आत्मा अपने अपने रिकॉर्ड को पहचानेगी, कि मेरी आत्मा में कैसे कैसे अनेक जन्मों का पार्ट भरा हुआ है, और हमारा बाप कौन है, बाप को भी पहचानेगी। ये सारा ज्ञान होने के बाद इस मनुष्य शक्ति में विनाश वर्पा होना है। हर मनुष्य आत्मा बाप को पहचानेगी, बाप को याद करेगी, बाप में समा जाएगी, संकल्पों से एक होकर समा जाएगी, वाइब्रेशन से एक होकर समा जाएगी, दृष्टि से एक होकर समा जाएगी। जो बाप खास तुम बच्चों से कहते हैं कि मैं तुम बच्चों को नैनों पर बिठा कर ले जाऊंगा, इनको नहीं कहते हैं, किनको? ब्रह्मा को, ब्रह्मा के फॉलोअर्स को नहीं कहते, उनको नहीं कहते हैं नैनों पर बिठा कर ले जाऊंगा, उनको माने हैं दूसरे धर्म वालों को नहीं कहते हैं, तुम बच्चों को कहते हैं नैनों पर बिठा कर ले जाऊंगा। क्या मतलब हुआ? नैन तो इतने छोटे हैं, बच्चे तो इतने बड़े बड़े दुम्ब हैं, कैसे ले जाएगा है? दृष्टि के प्यार की बात है या स्थूल बात है? हैं? दृष्टि के प्यार की बात। पाप की दृष्टि का प्यार इतना गहरा होगा कि बच्चे अपने को रोक नहीं सकेंगे, बाप के प्यार की दृष्टि में डूब जाएंगे। याद में बैठ जाएंगे, डूब जाएंगे। लेकिन दुनिया वाले ये और इनके फॉलोअर्स, इनके लिए कहा नहीं कहा क्या नैनों पर बिठा कर ले जाऊंगा? मना ये और वो, उनको किसका सामना करना पड़ेगा है? अरे विनाश की भयंकरता का सामना करना पड़ेगा। जो मुसलमानों की धर्म पुस्तक कुरान में भी लिखा है, क्या जब कयामत होगी तो खुदा के बंदे बड़े मौज में रहेंगे? क्या मौज में रहेंगे या हाय भैया तो वह करेंगे? मौज में रहेंगे। अभी भी बाप कहते हैं ये संगम युग है, मौजों का युग, क्या रोने चिल्लाने का युग नहीं है, अभी ऐसा टाइम आने वाला है कोई हाय हाय करेगा, कोई जय जयकार करेगा। तुम बच्चे क्या करेंगे? हम बच्चे जय जयकार करेंगे और सारी दुनिया हाहाकार करेगी। तो देखो बाप कहते हैं जिससे वर्षा मिलता है मुक्ति, जीवन मुक्ति का स्वर्ग का जिससे वर्षा मिलता है वो ही इस मनुष्य सृष्टि पर बड़ा है। क्या है? बड़ा। बड़ा माने बड़ा भाई या बड़ा बाप है? बड़ा भाई। बड़ा भाई को बाप समान कहते हैं, बड़े भाई को बाप बाप नहीं कहते। तो उनको यही कहना जो तुम्हारे पास समझने के लिए आते हैं उन सबको यही बात बताना कि शिव बाबा अक्षर बहुत मीठा है। क्या मीठा? क्या है? शिव बाबा। शिव बाप कहने से बुद्धि में मिठास नहीं आएगा। क्यों? शिव बाप निराकार। निराकार को याद करना सहज है, मीठा है या कठिन है? है? कठिन है। इसलिए शिव बाबा अक्षर बहुत मीठा है। साकार को पहचानो, इस सृष्टि पर वो बड़ा कौन है साकार? क्या जिसके लिए बोला छोटा याद रूप नहीं आता है, बिंदु रूप नहीं याद आता है, तो क्या करो? बड़ा रूप याद करो, उस बड़े को पहचानो, वो बड़ा ही शिव बाबा है। जो इस सच्ची पर सदा कायम है, देह का शिव बाबा जो स्वर्ग रचता है, क्या वो बेहद का शिव बाबा है? हद की भक्ति मार्ग की जो दुनिया है उसमें तो कहते हैं शिव बाबा शिवलिंग को, लेकिन जानते कोई नहीं है इसका राज क्या है, इसे क्यों पूजते हैं, क्यों माथा टिकाते हैं, कोई जानता है? हैं? कोई नहीं जानता। जो कहते हैं कह समझे कवि, कह समझे रवि, या तो कवि ही कविता का अर्थ सही बता सकता है, या तो सूर्य ज्ञान सूर्य सृष्टि पर उतर आए तो उस कविता का सही अर्थ बताए। यही बात है, जिस चित्रकार ने वो शिवलिंग बनाया, वो चित्रकार ने वो भावभंग में उसमें भर दी कि सारी दुनिया में वो श्रेष्ठ माना जाता है, सारी दुनिया की खुदाइयों में सबसे जाति तादाद में लिंग मूर्तियां मिली, सार्वभौम हो गया, लेकिन उस शिवलिंग के बारे में गहराई से जानकारी किसी को है ही नहीं। उसकी जानकारी वो आत्माओं का बाप, निराकारी बाप, निराकार ज्ञान का भंडार देने वाला अकूट भंडारी जब आता है तो उस शिवलिंग रूप मनुष्य शक्ति के अविनाशी बाप का परिचय देता है कि वो ही बाप है जो हेवनली गॉड फादर है, जिसकी तुम पूजा करते आए शिव के मंदिरों में, जो स्वर्ग रचते हैं, वो कहते हैं मुझे याद करो तो तुम पवित्र हो जाएंगे। क्या वो शिवलिंग का जो रूप है वो एवर प्योर है या परसेंटेज में प्योर है? कैसे कैसे साबित करेंगे एवर प्योर है? इसलिए एवर प्योर है कि वो सारी मनुष्य सृष्टि के संग के रंग में आएगा, सारी मनुष्य सृष्टि उसे याद करेगी, पहचानेगी, लेकिन वो किसी के संग के रंग में नहीं आएगा। ये एवर प्योर की पहचान है। धर्म पिताएं एवर प्योर नहीं, क्योंकि वो जिनके संग के रंग में आए नीचे गिरते गए, अपने फॉलोअर्स को भी नीचे गिराया। और ये एवर प्योर प्रैक्टिकल जीवन में ऐसा बनता है कि स्वयं भी पवित्र बनता है और संग के रंग में जो भी आते हैं बुद्धि से ही भले याद करें, मन के संकल्पों से ही भले याद करें, भले उन्होंने आंखों से देखा भी न हो तो भी जो मन बुद्धि का संग है वो उनको पवित्र बना देगा। क्या इसलिए वो एवर प्योर है, उनके वाइब्रेशन का संग का रंग, उनकी वृत्ति का संग का रंग, उनकी दृष्टि का संग का रंग उसको नहीं लगेगा शिवलिंग को, उसके संग का रंग सारी सृष्टि को लगेगा। ये है एवर प्योर की पहचान। तुम बच्चे बुद्धिमान बाप के बुद्धिमान बच्चे हो, बुद्धिमान बच्चे बिना प्रूफ बिना प्रमाण के कोई बात मानने के लिए
तैयार नहीं। कोई कहे आत्माओं का बाप शिव ज्योति बिंदु एवर प्योर है तो तुम मान लेंगे मानेंगे? इसलिए नहीं मानेंगे कि 80 साल हो गए वो एवर प्योर ज्योति बिंदु शिव इस सृष्टि पर आया हुआ है, बोलता है मैं जिस मनुष्य तन में प्रवेश करता हूँ उसका नाम ब्रह्मा रखता हूँ। उस ब्रह्मा में प्रवेश करके मुख से बोलता भी हूँ। बोलता है कि नहीं है? और बोलते बोलते ज्ञान का अकूट भंडार देते देते कितने वर्ष बीत गए है? 80 साल बीतने को आए लेकिन एक भी बच्चा प्योर बना है? पवित्र बना? नहीं बना। इससे साबित होता है कि बिंदु को प्योर नहीं कहेंगे, वो बिंदु तो ज्ञान का अकूट भंडार है इसलिए पवित्र है। इसलिए पवित्र है? ज्ञान का अकूट भंडार है इसलिए पवित्र है। इसलिए गीता में कहा है नहीं ज्ञान सदृशम पवित्रम ही विद्यते। इस दुनिया में ज्ञान के समान पवित्र कोई चीज नहीं है। और वो ज्ञान कहाँ से आता है? प्रजापिता से आता है? प्रजापिता तो नहीं आता, प्रजापिता तो खुद ही पति तम कामी काटा है, विषपाई है। वो तो पतितों का राजा है, वो आत्मा स्वयं रामायण में लिखा हुआ है मैं पतितन को राजा। रामायण जैसा धर्म ग्रंथ है वो आत्मा स्वयं इस बात को स्वीकार करती है कि मैं दुनिया में जितने पतित हैं उन सब पतितों का राजा मैं हूं। तुलसीदास की आत्मा ने स्वीकार किया। तो देखो जो भोगियों का भी भोगी है, महाभोगी है, दुनिया में जितनी भोग करने वाली आत्माएं हैं उन सब का बाप है। जो मुरली में बोलता है बच्चे तुम्हारा बाप आया हुआ है, ये किसने बोला है? अच्छी बातों में भी बाप आया हुआ है और बुरी बातों में भी बाप आया हुआ है। अच्छे से अच्छे देवात्माओं का भी बाप है। मनुष्य सृष्टि के पहले पत्ते का भी बाप है और इस मनुष्य सृष्टि में जो राक्षसी आत्माएं हैं उनका भी बाप। इसलिए बोला ब्रह्म महावाक्य कि दुनिया की ऐसी कोई बात नहीं जो तेरे पर लागू न होती हो। अच्छी से अच्छी बात और बुरी से बुरी बात। तो मुझे याद करो तो पवित्र हो जाएंगे। पवित्र हो जाएंगे तो फिर पवित्र दुनिया का मालिक बन जाएंगे। क्या? यथा राजा तथा प्रजा बन जाएंगे। परिवार में 10 बच्चे हैं और परिवार का बाप बड़े बड़े कारखानों का मालिक है, उन 10 बच्चों में से जो छोटा बच्चा होगा वो किसी से बात करेगा तो ये बताएगा कि ये कारखाने मेरे नहीं है, मेरे बाप के हैं, ऐसे बताएगा? क्या कहेगा? ये कारखाने मेरे हैं। भले जो बाप है मृत्यु से पूर्व बड़े बच्चे को सभी कारखानों का वर्षा दे कर जाएगा, तो भी जो बड़ा भाई है वो बाप समान बन करके पाठ बजाएगा कि बाप बन के बैठ जाएगा है, बाप समान बन करके कार्य करेगा, परिवार की परवरिश करेगा, बाप समान परवरिश करेगा तो बाप समान, फिर कोई भी उसे ये नहीं कहता ये बाप है। छोटा भाई कहेगा ये मेरा बाप है? नहीं, कभी नहीं कह सकता। तो देखो जो मनुष्य सृष्टि का बड़ा है बाप है वो मालिक बनता है, वसुधैव कुटुंबकम बनता है, सारी वसुधा एक परिवार बनती है, उस परिवार की ये मेंटेलिटी हो जाती है, चाहे छोटा बच्चा हो चाहे बड़ा बच्चा हो वो विश्व की मालिक पाने को अपना मानेगा, मैं विश्व का मालिक हूँ। क्या मानेगा? मैं विश्व का मालिक यथा राजा तथा प्रजा। तो ये बात भी तो अच्छी है ना बच्चे? अच्छा क्या बात अच्छी है कि परिवार के हर बच्चे की मेंटेलिटी बाप समान हो जाएगी, जैसे बड़े भाई की मेंटेलिटी है ये सारा विश्व मेरा है, मैं विश्व का पिता हूं, ऐसे परिवार के जो भी भांति होंगे वो क्या समझेंगे, ये सारे विश्व पर मेरा कंट्रोल है, क्योंकि सभी की मेंटेलिटी एक जैसी हो गई, कोई एक दूसरे को क्रॉस करने वाली मेंटेलिटी वाला नहीं होगा, होगा है? नहीं होगा। तो ये बात अच्छी है कि तुम बच्चे सभी इस विश्व के मालिक बन जाएंगे, यथा राजा तथा प्रजा बन जाएंगे, पवित्र रहें और याद भी करें, ये भी बात बहुत अच्छी है। तुम बच्चे बहुत मददगार रहेंगे अगर ऐसी स्टेज बनी रहेगी, क्या कि पवित्र रहें और क्या करें, एक को याद करें, तो तुम बहुत मददगार बनेंगे नई दुनिया की स्थापना करने में। दो अक्षर तीन अक्षर कहना सहज होता है और याद भी करते हैं, बोलो जब वो लौकिक बाप है तो लौकिक वर्षा देता है, हद का वर्षा देता है, थोड़ा देता है या विश्व की बात सही देता है? है थोड़ा देता है, और ये तो उनसे वर्षा मिलता है जो बेहद का बाप है, तो विश्व की बात सही मिलती है, फिर भी तुम उनको याद करते हो दुख में, तो फिर तुम्हारा मिलना हो जाएगा, और ये तो बाबा है, और सो भी बाबा है और स्वर्ग का रचयिता है तो जरूर वर्षा मिला है ना। ये देवी देवताओं को वर्षा मिला है। देवी देवता है किन्हें कहा जाता है, है? देव क्यों कहा जाता है? देव माने जिनकी मेंटलिटी में हो देना है। क्या क्या मेंटलिटी में हो, क्या करना है? देना है, लेना नहीं है, है? जिनकी मेंटलिटी में भरा हुआ है, भले ब्रह्मा कुमार कुमारी कहलाते हैं लेकिन मेंटलिटी में भरा हुआ है, लाओ तुम भी लाओ, तुम भी लाओ, तुम भी लाओ। वो लेवता हुए या देवता हुए? हैं? लेवता हुए। तुम बच्चों की मेंटलिटी में ऐसा भर जाएगा कि हम देने वाले हैं, विश्व के मालिक के बालक हैं, हम किसी से लेने वाले नहीं। हमारा बाप स्वयं इतना पुरुषार्थी है, बाप के हम बच्चे स्वयं इतने पुरुषार्थी हैं कि किसी से भीख मांगने की हमको दरकार है ही नहीं। तो ये देवी देवताओं को वर्षा मिलता है। वो वर्षा कैसे मिला है वो हम बताते हैं ना कि मुझे याद करो तो तुम्हारे विकर्म विनाश हो जाएंगे, तो जरूर मुक्ति धाम में जाएंगे, पाप कर्म खत्म हो जाएंगे, तो तुम कहाँ चले जाएंगे? पापों से मुक्ति धाम में चले जाएंगे। ओम शांति।